अब क्या हो रहा है आइए देखिए। 142 से 147, कलामुल्लाह को मजबूती से पकड़ना है। वबात ना मूसा सलासी न लैला, और हमने मूसा अलैहि सलाम से 30 रातों का वादा किया और 10 रात मजीद से इन 30 रातों को पूरा किया। ये ज़्यादा क्यों कर दी? गए तो 30 रातों के लिए थे, फिर 40 कैसे हो गई? मोहब्बत से, जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ से जाने को दिल करता है, और जिससे मोहब्बत होती है उसको रोकने को दिल करता है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि 30 दिन की बजाय 40 दिन का दौरे कुरान कर लें, क्या बनेगा? ईद के दिन की छुट्टी, ईद के बाद के 10 दिन में 6 रोज़े भी रखवा देंगे, आपको इफ्तारी भी करा देंगे शवाल की। कितनों का दिल डूबने लगा, वैसे आइडिया दिल में आ रहा है। अल्लाह अकबर, ना अल्लाह का दिल कह रहा था कि मूसा जाए और ना मूसा का दिल चाह रहा होगा कि मैं आऊँ। 30 से 40 हो गए, बस इसी को मोहब्बत कहते हैं। और मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम से कहा कि मेरे बाद इनका इंतज़ाम रखना और इसलाह करते रहना, और बद नज़म लोगों की राय पे अमल मत करना। और जब मूसा अलैहिस्सलाम हमारे वक्त पर आए और इनके रब ने इनसे बातें की, तो अर्ज़ किया कि मेरे परवरदिगार अपना दीदार मुझको करा दीजिए कि मैं एक नज़र तुमको देख लूँ। इर्शाद हुआ कि तुम मुझको हरगिज़ नहीं देख सकते, लेकिन तुम इस पहाड़ की तरफ देखते रहो, वो अगर अपनी जगह पर बरकरार रहा तो तुम भी मुझे देख सकोगे। बस जब इनके रब ने पहाड़ पर तजल्ली फरमाई तो तजल्ली ने इनके पर खच्चे उड़ा दिए, यानी बर्दाश्त ना कर सके, और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर पड़े। फिर जब वो होश में आए तो अर्ज़ किया, बेशक आपकी ज़ात पाक है, मैं आपकी जनाब में तौबा करता हूँ और मैं इससे पहले ईमान लाने वाला हूँ। इर्शाद हुआ है, मूसा मैंने पैगंबरी और अपनी हम कलामी से और लोगों पर आपको इम्तियाज़ दिया है, यानी आपको बड़ा कर दिया, आपकी एक आइडेंटिफिकेशन बना दी है इस चीज़ को, तो जो कुछ तुमको मैंने अता किया है इसको लो और शुक्र करो। और हमने चंद तख्तियों पर हर किस्म की नसीहत और हर चीज़ की तफसील इनको लिख कर दी, बस तुम इनको पूरी ताकत से पकड़ लो और अपनी कौम को हुक्म दो कि इनके अच्छे अच्छे अहकाम पर अमल करें। अब बहुत जल्द तुम लोगों को इन बेहुक्मों का मुकाम दिखलाता हूँ। मैं ऐसे लोगों को अपने अहकाम से दूर ही रखूँगा, यानी बरगश्ता ही रखूँगा, जो दुनिया में तकब्बुर करते हैं। इससे पता चलता है कि किताब से दूरी की एक बहुत बड़ी वजह तकब्बुर होती है, जिसका इनको कोई हक नहीं। और अगर तमाम निशानियाँ देख लें तब भी वो इन पर ईमान ना लाएँ, और अगर हिदायत का रास्ता देखें तो इसको अपना तरीका ना बनाएं, और अगर गुमराही का रास्ता देख लें तो इसको अपना तरीका बनाएं। यही सबब से है कि इन्होंने हमारी आयात को झुठलाया और इनसे गाफिल रहे, और ये लोग जिन्होंने हमारी आयतों को और क़यामत के पेश आने को झुठलाया, इनके सब काम गारत हो गए, इनको वही सज़ा दी जाएगी जो कुछ वो किया करते थे। यहाँ आप देखिए कि 147 में अल्लाह ताला ने एक बहुत ही बड़ी बात कह दी, बल्कि 146 में आप देखिए सबील रुश्त और सबील गई की बात है। अल्लाह ताला ने इंसानों को ज़िंदगी में हमेशा मौके दिए हैं। हम सब जिंदगी भर दुआ करते हैं अहदिना सिरात अल-मुस्तकीम, अल्लाह सीधा रास्ता दे। जब आपसे लोग सिरात मुस्तकीम की बात की जाए तो आपके जहन में कैसा रास्ता आता है? सीधा, सांप की तरह बिल्कुल सीधा, बारीक सा, ऐसा नहीं है। ये है वो मुकाम जिसमें कई साल से हमेशा एक फ्लो चार्ट दिखाती हूँ, और वो क्या है? सबील रुश्त बा मुकाबला सबील गई। आप इसको कोई भी नाम दे दें, सिरात मुस्तकीम बिल मुकाबिल, मुस्तकीम के ऑपोजिट क्या होगा? दालीन, भटकने वालों की। आप देखिए कि हिदायत की तरफ बुलाए जाने वाले दो मुख्तलिफ रवैये हैं इसमें, 146 और 7। दो राहें हैं, दो मंजिलें हैं, एक तरफ सबील रुश्त है, एक तरफ सबील गई है। सबील रुश्त का जो एंड है ना वो जन्नत है, और जो सबील गई है उसका एंड जहन्नुम है। चॉइस आपकी है, बीच में कई दोराहे आएंगे। ज़रा सा आप इसको देखिएगा कि एक शख्स घर से निकला, ये ऊपर से शुरू करें ना आप, ग्रीन लेन का ऊपर कैच देखिए, ये है सबील रुश्त, ये क्रूकिड है, ऐसे है, टिक 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 टिक। एक शख्स घर से बहुत अच्छी नीयत से निकला, बहुत अच्छे काम के इरादे से निकला, कुरान शुरू कर दिया, नेकी करने लगा, हर एक नेकी पे लीजिए, समझ ज़्यादा आता है पढ़ने पढ़ाने से, आपने कहा मैं कुरान शुरू करती हूँ, मैं पढ़ूंगी। अब जहाँ जहाँ आप इस बंदे को गुज़रता देखें, यानी पहले एक शख्स था वो सिर्फ इस पे था। हम ये सोचते हैं ना कि नेक लोगों का रास्ता एक ही है, बस उनको एक दफ़ा पता लगता है, दूसरी दफ़ा नहीं लगता, ऐसा नहीं है। जिस तरह सबीलुल रुश चलती है ना, इसी तरह ऑरेंज लेन को देखिए, ये सबीलुल गई है, एक दूसरा शख्स है जो भटका हुआ है, और अगर वो उसी पे रहा तो नीचे देखिए जहन्नुम है, उसने जहन्नुम में पहुंचना है। अब होता क्या कि दोनों के इंटरसेक्शन पे, जिसको आप चौक कहते हैं, चौराहा कहते हैं, चुरंगी कहते हैं, वो येलो कलर के दायरे हैं। ये मुकाम बड़े अहम है। जो शख्स सबीलो रुश पे था, जिन्हें नेकियां कर रहा था, वो जूं ही इस चौराहे पे आएगा ना, तो उसको गलती लग सकती है। अब ऊपर से नीचे जा रहे ना, लेकिन अगर आप देखे कि वो ऑरेंज लेन पे चढ़ जाए, यानी वो शख्स जो सबील और रुश्त और सबील और गई के दुराहे पे पहुंचता है, रास्ते की आजमाइशों और सख्तियों से घबरा कर अपना रास्ता बदल लेता है और सबील और गई पे चढ़ जाता है, फिर क्या होता है नेक्स्ट स्टेप? वो कहाँ पहुंचेगा? जहन्नुम पे पहुंचेगा। उसको पता ही नहीं चलेगा मैंने क्या करना था, क्या किया, कैसे हुआ। इसके बरक्स आप देखिए, थोड़ी देर बाद एक और मौका आ जाता है, अल्लाह फिर एक चौराहा ले आते हैं। आप देखिए दोबारा या ग्रीन लेन से उसका इंटरेक्शन हो रहा है, फर्स्ट के बाद सेकंड को देखिए। ये है मौका कि दोबारा रूट बदल लो। कभी आप रास्ता गलत ले ही लें तो आपका नेविगेटर आपको यू टर्न करवा के ले आता है ना वापस। अल्लाह मौके देते, सारी ज़िंदगी फिर कोई नेकी का मौका आता है, फिर रमज़ान आ जाता है, फिर कोई दोस्त बुला लेती है, फिर ये होता है वो होता है। अच्छे भले लोग कुरान शुरू करते हैं, फिर उम्रे पे चले जाते हैं, कुरान छूट जाता है, पाकिस्तान आ गए जी, फैमिली में लग गए, शादी आ गई। कई लोगों की तो नेकियां उनको नेकी से रोक लेती हैं, कहीं कोई बीमारी आ गई, परेशानी आ गई, तो हर वक्त खतरे में हैं आप और मैं भी। बार बार की इंतबाह, बार बार की आजमाइशों को नज़रअंदाज करते हुए ऐसा बंदा बिलाहर जहन्नुम में गया। अगर आप पहले शख्स का ट्रैक देखें जो आपको डॉटेड लेन में वाइट कलर का दिखाया गया, तो चले थे कहाँ से? ग्रीन लेन से, और एंड किधर हो रहा है? ऑरेंज लेन, जहन्नुम। ये सैड स्टोरी है, इसलिए हमें दुआ सिखाई गई कि रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। इसीलिए अभी ऊपर एक दौर को पीछे पढ़ के आए हैं कि मरते दम तक मुसलमान रहना, इसी के अंबिया अपनी औलादों को फिक्र दिलाते थे। अब दूसरी तरफ चलिए, ऑरेंज लेन। आपके ख्याल में एक शख्स गलत काम करता है, शराबी, कबाबी, जो भी, भंगी, चरसी। अब वो जब ऑरेंज लेन के थ्रू ग्रीन लेन से टकराया, आजमाइश आ गई, कोई अच्छा दोस्त मिल गया, बीमारी आ गई, कोई नेमत मिल गई शुक्राने की, आप देखिए कि डॉटेड लेन में पीच कलर से, यानी येलो सी लेन के ऊपर, नीचे ऑरेंज में नहीं गया, ग्रीन पे चढ़ गया। अब ग्रीन पे चढ़ा गया, थोड़ी देर उसी पे रहता है, फिर रास्ते में आजमाइश आई, फिर आजमाइश आई, कुछ अरसे बाद दूसरे चौराहे पे आ गया। उसने कहा नहीं, अब मैंने पकड़ लिया, अब मैं नहीं छोड़ूंगा। और होते होते मुस्तकिल मिजाजी और अल्लाह की मदद और उसकी रहमत से बिलाखर अपनी हकीकी मंजिल, यानी जन्नत में पहुंच गया। अगर सफ़र के आगाज़ में देखिए तो येलो लेन सबीलुल गई पे थी, और एंड पे किधर पहुंची? जन्नत पे। अल्लाह से दुआ करें मेरे, आप और हमारी नस्लों के साथ ऐसा हो। जहाँ से भी दीन का सफ़र ज्वाइन करते हैं ना, कर लिया करें, अल्लाह ताला आपका एंड अच्छा कर देगा। कुछ लोगों का शुरू का हिस्सा कुछ छूट जाए, कहते नहीं अब तो हम छोड़ चुके। अगर आपकी कुछ दोस्तें, सहेलियाँ, फ्रेंड्स अभी शुरू के पारे नहीं सुन सके ना, आप उनको कल से अगले पारे, 10वें पारे पे बुलाएं। और कल का पारा भी बड़ा अहम है, एक नया बाब शुरू होगा कुरान का। वहाँ से शर्त एक है कि आप नियत रखें कि अल्लाह मैंने मोहब्बत से बुलाना है। जहाँ से शुरू करोगे एंड जन्नत ही होगा। आपने देखा पहला मोड़, दूसरा मोड़, जहाँ से भी कुछ चढ़ेगा एंड पे तो उसी पे आएगा ना। फिर आगे देखिए 142 से 147 में जो हमें एक मैसेज मिला है कि मुफसदीन की राह पे नहीं चलना, अपनी और दूसरों की इसलाह भी करनी है और इसकी कोशिशें जारी रखनी है, अल्लाह की किताब को मजबूती से थामना है और कलाम इलाही के पैगाम को फैलाना है, हिदायत की राह पे चलना है और अमाल को ज़ाया होने से बचाना है, और अल्लाह की रज़ा को पाने के नुक्ते इसलाह करना है, तौबा करनी है, बिगाड़ पैदा करने वालों के तरीक़ों पर नहीं चलना, यानी कलाम अल्लाह पर अमल करने का हुक्म देना भी है और ख़ुद भी अमल करना है, और शुक्र बजा लाना है, और अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करनी है। अल्लाह ताला में इन सब चीज़ों पे जमा दे। आगे है रुकू नंबर 8, आयत 148 से 151, अल्लाह से बख्शिश और रहमत की दुआएं। व तखज़ कौम मूसा मिन बादिह, और मूसा अलैहि सलाम की कौम ने इनके बाद अपने जेवरों का एक बछड़ा माबूद ठहरा लिया, जो कि कालिब यानी जिस्म की शक्ल में था, जिसमें एक आवाज़ थी। क्या उन्होंने ये ना देखा कि वो इनसे बात नहीं करता था और ना कोई राह बताता था? इसको उन्होंने माबूद करार दिया और बड़ी बेइंसाफ़ी का काम किया। और जब नादिम हुए और मालूम हुआ कि वाकई वो लोग गुमराही में पड़ गए थे, तो कहने लगे, अगर हमारा रब हम पर रहम ना करे और हमारा गुनाह माफ़ ना करे, तो हम तो बिल्कुल ही गुजर जाएंगे, यानी गए गुजरे हो जाएंगे। और जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम की तरफ वापस आए, गुस्से और रंज में भरे हुए, यानी मूसा ने शिर्क की बात सुन ली थी कि कौम तो पीछे से शिर्क का शिकार हो गई, तो उससे उनको गुस्सा भी आया और गम भी आया, और ये ऐन ईमान की अलामत है। फरमाया कि तुमने मेरे बाद ये बड़ी बुरी जान नशीनी की कि अपने रब के हुक्म से पहले ही तुमने जल्दबाजी कर ली और जल्दी से तख्तियाँ एक तरफ रखी और अपने भाई का सर पकड़ कर इनको अपनी तरफ घसीटने लगे। हारून अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे माँ जाए यानी मेरे भाई, इन लोगों ने मुझको बेवकूफ़ समझा और करीब था कि मुझको कत्ल कर डाले, तो तू मुझ पर दुश्मनों को मत हंसवाओ और मुझको इन जालिमों के जेल में शामिल मत करो। क्या पता चला कि जब भाई भाई से और मुसलमान मुसलमान से लड़ता है तो दुश्मन खुश होते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे रब मेरी खता माफ़ फरमा और मेरे भाई की भी, और हम दोनों को अपनी रहमत में दाखिल फरमा, तो सब रहम करने वालों से ज़्यादा रहम वाला है। क्या पता चला, अल्लाह से दुआएं करनी है, गुमराही से बचना है, जल्दबाजी नहीं करनी, अल्लाह के रहम की उम्मीद रखनी है, गलतियों पर तौबा करते रहना है, जुल्म नहीं करना, ताकि अल्लाह की रज़ा को पा सकें। आगे है रुकू नंबर 9, 152 से 157, रसूल के मिशन में मदद करना। बहुत ही प्यारी आयात है। अल्लाह के नबी का जो असल मुकाम है ना, वो इन आयात में हम इंशाल्लाह सीखेंगे और देखेंगे उसको। इन्नल्लज़ीन तखज़ुल इजला सयनालुहुम, बेशक जिन लोगों ने गाय के बछड़े की परस्तिश की यानी उसकी पूजा की, इन पर बहुत जल्द इनके रब की तरफ से गज़ब और ज़िल्लत इस दुनिया की ज़िंदगी में भी पड़ेगी। और हम झूठी तोहमत लगाने वालों को ऐसी सज़ा दिया करते हैं, और जिन लोगों ने गुनाह के काम किए और फिर इसके बाद तौबा कर ले और ईमान ले आए, तो तुम्हारा रब इस तौबा के वक्त गुनाह माफ़ कर देने वाला, रहमत करने वाला है। और जब मूसा अलैहिस्सलाम का गुस्सा चला गया, तो इन तख्तियों को उठा लिया, और इसके मज़ामीन में इन लोगों के लिए जो अपने रब से डरते थे, हिदायत और रहमत थी। आप देखिए तौरात का क्या नसीब है, पैदा होते ही टूट गई। बाद में कौम ने तो जो उसके हिस्से बखरे किए वो किए। दूसरी बात पता चलती है कि गुस्सा आ जाए तो उसको जाने देना चाहिए। गुस्सा आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गुस्सा रहना नहीं चाहिए। और पता भी क्या चला कि हिदायत उनको मिलेगी जो अल्लाह से डरेंगे, और रहमत भी। और मूसा अलैहिस्सलाम ने 70 आदमी अपनी कौम में से हमारे वक्त मुअय्यन के लिए मुंतखब किए। बस जब इनको जलजले ने आ पकड़ा, तो मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज़ करने लगे, ऐ मेरे परवरदिगार, अगर तुझको ये मंजूर होता तो तू इससे कबल ही इनको और मुझको हलाक कर देता। क्या तू हम में से चंद बेवकूफ़ों की हरकत पर सबको हलाक कर देगा? ये वाक़या महज तेरी तरफ से इम्तिहान है, ऐसे इम्तिहानात से जिसको तू चाहे गुमराही में डाल दे और जिसको चाहे हिदायत पे कायम रखे। तू ही हमारा कारसाज़ है, बस हम पर मग़फ़रत और रहमत नाज़िल फरमा, और तू सब माफ़ी देने वालों से ज़्यादा अच्छा है। और हम लोगों के नाम दुनिया में भी नेक हाली में लिख दे, और आखरत में भी हम तेरी तरफ रजू करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं अपना अज़ाब इसी पे वाक़े करता हूँ जिस पर चाहता हूँ, और मेरी रहमत तमाम अशिया पर मुहीत है। तो वो रहमत इन लोगों के नाम ज़रूर लिखूँगा जो अल्लाह से डरते हैं और ज़कात देते हैं, और जो हमारी आयतों पर ईमान रखते हैं। यह आपने नोट किया? अक्सर हम कहते हैं अल्लाह अपना रहम करेगा, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। यह आयत इस बात की दलील है कि अल्लाह की रहमत किस पे आती है? जो अल्लाह से डरता है, ज़कात देता है और आयतों पे ईमान लाता है। जो लोग ऐसे रसूल नबी उम्मी का इत्तबा करते हैं जिनको वो लोग अपने पास तौरात और इंजील में लिखा हुआ पाते हैं, वो इनको नेक बातों का हुक्म देते हैं और बुरी बातों से मना करते हैं, और पाकीज़ा चीज़ों को हलाल बताते हैं और गंदी चीज़ों को इन पर हराम फरमाते हैं, और इन लोगों पर जो बोझ और तौक थे इनको दूर करते हैं, बस जो लोग इस नबी पर ईमान लाते हैं और इनकी हिमायत करते हैं और इनकी मदद करते हैं और इस नूर का इत्तबा करते हैं जो इनके साथ भेजा गया, ऐसे लोग पूरी फलाह पाने वाले हैं। ये 157 बहुत ही खूबसूरत आयत है। इसके बारे में एक रिवायत भी आती है। अता बिन यसार कहते हैं कि मैंने अब्दुल्ला बिन अमर से पूछा कि अल्लाह के नबी की जो सिफतें तौरात में हों वो मुझे बताओ। तो उन्होंने फरमाया, हाँ वल्लाह ही आपकी सिफतें तौरात में हैं जो कुरान में भी हैं। क्या नबी, हमने आपको गवाह और खुशखबरी सुनाने वाला और आगाह करने वाला और अनपढ़ों को गुमराही से बचाने वाला बनाकर भेजा है। आप मेरे बंदे और रसूल हैं, आपका नाम मुतवक्किल है, आप बदगु और बदखुल्क नहीं हैं। अल्लाह ताला आपको कब्ज़ न करेगा जब तक कि आपकी वजह से लोगों की जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कहलवा कर टेढ़े दीन को दुरुस्त न कर दे, बंद दिलों को खोल दे, बहरे कानों को सुनने वाला बना देगा, अंधी आंखों को देखती कर देगा। यदि पिछली किताबों में भी हमारे नबी की खूबियाँ मौजूद थी, फिर आयत 157 से कामयाबी की कुछ शराइत, रसूलुल्लाह पर ईमान लाना, आपकी हिमायत करना, आपकी मदद करना और कुरान की इत्तबा करना। तो क्या आज के मुसलमानों को इसकी ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है। क्या पता चला अल्लाह की रज़ा कैसे मिलेगी? नंबर एक, रसूलुल्लाह की पैरवी करेंगे, रसूलुल्लाह की इज्जत करेंगे, आपकी मदद करेंगे, आपकी मोहब्बत के तकाज़ों को समझेंगे, बुराइयों से रोकेंगे और नेकियों का हुक्म देंगे, और अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमा दे। आगे रुकू नंबर 10, 158 से 162। नेमतों पर शुक्रगुजारी का रवैया होना चाहिए। कुल या युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाही, आप कह दीजिए कि ऐ लोगो, मैं तुम सब की तरफ इस अल्लाह का भेजा हुआ हूँ जिसकी बादशाही तमाम आसमानों पर और ज़मीन में है। इसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वही ज़िंदगी देता है और वही मौत भी देता है। बस अल्लाह पर ईमान लाओ और इसके नबी उम्मी पर जो कि अल्लाह ताला पर और इसके अहकाम पर ईमान रखते हैं, और इनकी पैरवी करो ताकि तुम राहे रास्त पर आ जाओ। क्या पता चला कि जब इंसान को अल्लाह के नबी का मुकाम समझ आ जाता है तो फिर वो उनकी हर लिहाज से मदद भी करने को तैयार होता है। इससे भी ये बात पता चलती है कि हर दौर के नबी, क्योंकि हम इसमें नबियों के किस्से पढ़ रहे हैं ना, तो आप देखेंगे कि अम्बिया कराम को मानने वाले लोगों ने अपनी ज़िंदगी में नबियों को खुली आंखों से भी देख लिया फिर भी नहीं माने। तो जिसको नहीं मानना वो नहीं मानता, और जो लोग बिन देखे नबी को मान ले फिर उनका मुकाम और उनका कितना ज़्यादा मर्तबा होगा अल्लाह ताला की निगाहों में। फिर आगे आयत 159 में फरमाया, और कौम मूसा में एक जमात ऐसी भी है जो हक़ के मुताबिक हिदायत करती है और इसके मुताबिक इंसाफ भी करती है, और हमने इनको 12 ख़ानदानों में तकसीम करके सब की अलग अलग जमात मुकर्रर कर दी, और हमने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया जबकि इनकी कौम ने इनसे पानी मांगा कि अपने असा को फला पत्थर पे मारो, बस फौरन इससे 12 चश्मे फूट निकले। हर हर शख्स ने अपने पानी पीने का मौका मालूम कर लिया, और हमने इन पर अबर का साया फिगन कर दिया और इनको मनोसलवा पहुँचा दिया, यानी वो जो उनके ऊपर नाजिल हुए थे परिंदे और इस तरह से एक गून टाइप चीज़ थी, खाओ नफीस चीज़ों में से जो हमने तुमको दी हैं, और उन्होंने हमारा कोई नुकसान नहीं किया लेकिन अपना ही नुकसान करते थे। इसको हम मुहावरे में क्या कहते हैं? उन्होंने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी। अल्लाह का कुछ नहीं बिगड़ता हमारी ना शुक्री से, हमारी ना फरमानियों से, अल्लाह को बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असल बात यह है कि हम अपना आप खुद बिगाड़ते हैं, अपने आप को खुद नुकसान में डालते हैं, और जितना ज़्यादा आप खुद अपना ख्याल रखते जाएंगे, अपने आप को बुराइयों से बचाएंगे, इतना ज़्यादा आपका अपना फ़ायदा होगा। खाओ नफीस चीज़ों में से जो हमने तुमको दी हैं, और उन्होंने हमारा कोई नुकसान नहीं किया लेकिन अपना ही नुकसान करते थे। और जब इनको हुक्म दिया गया कि तुम लोग इस आबादी में जाकर रहो और खाओ इससे जिस जगह तुम रग़बत करो, और ज़ुबान से ये कहते जाना कि तौबा है, और झुके झुके दरवाज़े में दाखिल होना, हम तुम्हारी ख़ताएं माफ़ कर देंगे, जो लोग नेक काम करेंगे इनको मज़ीद बराबर देंगे, यानी जो शुक्र करेगा उसको और मिलेगा, बस बदल डाला इन जालिमों ने एक और कलेमा जो खिलाफ थे इस कलमे के जिसकी इनसे फरमाइश की गई थी, इस पर हमने इन पर एक आसमानी आफत भेजी इस वजह से कि वो हुक्म को ज़ाया करते थे। क्या पता चला, यहाँ उम्मत मूसा के एक गिरोह का तذکرہ है जो हक पे था, हक की तरफ रहनुमाई करते थे और उसके मुताबिक इंसाफ करते थे। ये कौन लोग थे? 159 आयत में ये वो लोग हैं कि जिन्होंने फिर नबी को मान लिया था। आपको मुझे इसमें से अमल के नुक्ते जो मिलते हैं अल्लाह की रज़ा को पाने के लिए, पहली बात अल्लाह की तरफ दावत देनी है, ईमान लाना है, हक के मुताबिक हिदायत लेनी है, बनी इसराइल के वाक़यात से सबक लेना है और ख़ताओं पे बख्शिश की दुआ करनी है और हक़ के मुताबिक इंसाफ करना है और हर वो काम करना है जो अम्बिया कराम ने अपनी ज़िंदगियों में किया था। अब इसके आगे वो किस्सा है जिसको हम बंदर वाला किस्सा कहते हैं, असहाबे सब का यहाँ कदरे तफसील से है। ख़ास तौर पे आज आपने मैंने इस सोच से पढ़ना और सुनना है कि इन लोगों ने जो काम किए थे, क्या आज हमारी उम्मत में तो नहीं हो रहे? हीले, बहाने, 420ियाँ, धोखे। आइए देखें, 163 से 171, आजमाइशों से नसीहत लेना। बस अलखुमानिल क़रियतिल्लती, और आप इन लोगों से, इस बस्ती वालों का जो कि दरियाए शोर के किनारे के करीब आबाद थे, इस वक्त का हाल पूछिए, जबकि वो हफ्ते के बारे में हद से निकल रहे थे, जबकि इनके हफ्ते के रोज़ तो इनकी मछलियाँ जाहिर हो होकर इनके सामने आती थी और जब हफ्ते का दिन ना होता तो इनके सामने ना आती थी। हम इनकी इस तरह आजमाइश करते थे इस सबब से कि वो बेहुक्मी किया करते थे, और जबकि इनमें से एक जमात ने यूं कहा कि तुम ऐसे लोगों को क्यों नसीहत करते हो जिनको अल्लाह बिल्कुल हलाक करने वाला। आज भी लोग कहते हैं ना, आप क्यों बुरे बनते हैं भाई, जो कह रहे करने दे, सबको पता है, सबके घर में कुरान है, सब अल्लाह को जानते हैं। तो बिल्कुल वही जुमला उस दौर में भी, जिन लोगों ने बुराई से रोका उनको दूसरों ने कहा कि तुम दूसरों को बुरा ना कहो, तुम क्यों बुरे बनते हो, वही अंदाज़ है। उन्होंने जवाब दिया कि तुम्हारे रब के रूबरू उजर के लिए। इसको नोट कीजिए, लोग कहते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, आप इतना कुरान पढ़ाते हैं, क्या फ़ायदा है इतनी बातों का, भाई ना पढ़े, माज़िरत नीला रब्बी, कल अल्लाह को कह देंगे अल्लाह हम जहालत फैलाने वालों में नहीं, इल्म फैलाने वालों में थे, हम मुसलमानों के खिलाफ जो आग जलाई जा रही थी उसमें तेल नहीं डालते थे बल्कि उसको बुझाने की कोशिशों में थे, और ये काम इंशाल्लाह कल काम आएगा हमारा, और इसलिए भी कि वो शायद वो डर जाए, क्या पता हमारी बात से किसी को फ़ायदा भी हो जाए, ये खोप भी होगी। बस जब वो इसको भूल गए जो इनको समझाया जाता था, तो हमने इन लोगों को तो बचा लिया जो इस बुरी आदत से मना किया करते थे, और इन लोगों को जो कि ज्यादती करते थे एक सख्त अजाब ने पकड़ लिया, इस वजह से कि वो बेहुक्मी किया करते थे, यानी जब वो जिस काम से इनको मना किया गया था इसमें हद से निकल गए, तो हमने इनको कह दिया तुम जलील बंदर बन जाओ। और वो वक्त भी याद करना चाहिए कि आपके रब ने ये बात बतला दी कि वो इन यहूद पर क़यामत तक ऐसे शख्स को ज़रूर मुसल्लत करता रहेगा जो इनको सज़ाए शदीद की तकलीफ़ पहुंचाता रहेगा। बिलाशुबा आपका रब जल्दी ही सज़ा देता है और बिलाशुबा वो वाकई बड़ी मग़फ़रत और बड़ी रहमत वाला है। और हमने दुनिया में इनकी मुख्तलिफ़ जमातें कर दी, बाज़ इनमें नेक थे और बाज़ इनमें और तरह के थे। देखिए ये नहीं बताया कौन थे, यानी बड़ा खूबसूरत अंदाज़ है कि बुरे का तذکرہ नहीं किया, और हम इनको खुशहालियों और बदहालियों से आजमाते रहे कि शायद वो बाज आ जाए। फिर इसके बाद ऐसे लोग इनके जानशीन हुए कि किताब को इनसे हासिल किया, वो इस दुनिया फ़ानी का मालो मता ले लेते हैं और कहते हैं कि हमारी ज़रूर मग़फ़रत हो जाएगी, हालांकि अगर इनके पास वैसा ही मालो मता आने लगे तो इसको भी ले लेंगे। क्या इनसे इस किताब के इस मज़मून का अहद नहीं लिया गया कि अल्लाह की तरफ सिवाय हक बात के और किसी बात की निस्बत ना करना, और उन्होंने इस किताब में जो कुछ था इसको पढ़ लिया, और आखरत वाला घर इन लोगों के लिए बेहतर है जो तकवा रखते हैं, फिर क्या तुम नहीं समझते? और जो लोग किताब के पाबंद हैं और नमाज की पाबंदी करते हैं, हम ऐसे लोगों का जो अपनी इसलाह करें सबब ज़ाया नहीं करेंगे, और वो वक्त भी काबिले ज़िक्र है जब हमने पहाड़ को उठाकर साहिबान की तरह इनके ऊपर मुअल्लक कर दिया और इनको यकीन हो गया कि अब इन पर गिरा के गिरा, और कहा कि जो किताब हमने तुमको दी है इसे मजबूती के साथ कबूल करो और याद रखो कि जो अहकाम इसमें हैं इससे तवक्को है कि तुम मुत्तकी बन जाओ। बनी इसराइल को फिजिकली इतना सख्त मंजर दिखा के अल्लाह ने असल में क़यामत की पकड़ दिखा दी। आपके मेरे लिए अल्लाह की रज़ा को पाने के आमाल क्या हैं, नमाज़ों को कायम करना है, नेक रविश अख्तियार करनी है, किताब को मज़बूती से थामना है। वो क्या होता है? ज़ोर से पकड़ना है, गिर गई तो आटे का वज़न देना है? नहीं, हर हाल में पकड़ना है। जिस दिन आपके लिए आना मुश्किल हो उस दिन शायद को याद रखिएगा इंशाल्लाह। भली नसीहत करनी है, बुराई से रोकना है, पहले अपनी और फिर दूसरों की इसलाह करनी है, और ख़ास तौर पे हीले बहाने नहीं करने। इनको अल्लाह ने बंदर मछलियाँ पकड़ने पे नहीं बनाया था, मसले की शक्ल बिगाड़ने पे बनाया था। जुमे को जाके जाल लगाते, इतवार को जाके मछलियाँ पकड़ाते, कहते हफ्ते को तो कुछ किया ही नहीं। यह है हीला। आज उम्मत मुस्लिमा में इसकी कोई कमी नहीं है, और आपके हमारे मुल्कों में तो हर बात का हीला मौजूद है। कहते पैसा दो काम करा लो, नऊज़ुबिल्लाह। आगे बहुत अहम बात है अहद अलस्त की। आपसे मुझसे अल्लाह ने जो अहद लिया हुआ है, रुकू नंबर 12 172 से 181, अहद अलस्त की याद दहानी। वही जख़्स रब्बुक मिन बनी आदम, और जब आपके रब ने औलाद आदम की पुश्त से इनकी औलाद को निकाला और इनसे इन्हीं के मुतल्लिक इकरार लिया गया कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सबने जवाब दिया, क्यों नहीं, हम सब गवाह बनते हैं, ताकि तुम क़यामत के रोज़ यूँ ना कहो कि हम तो इससे महज बेखबर थे, या यूँ कहो कि पहले पहले शिर्क तो हमारे बड़ों ने किया और हम इनके बाद इनकी नस्ल से हुए। सो क्या इन गलत राह वालों के फेल पर तू हमको हलाकत में डालेगा? हम इसी तरह आयात को साफ साफ बयान करते हैं ताकि वो बाज आ जाए। और इन लोगों को इस शख्स का हाल भी पढ़कर सुनाइए कि जिसको हमने अपनी आयतें दी, फिर वो इनसे बिल्कुल ही निकल गया, फिर शैतान इसके पीछे लग गया, बस वो गुमराह लोगों में शामिल हो गया। और अगर हम चाहते तो इसको इन आयतों के बदौलत बुलंद मर्तबा अता करते, यानी इल्म लिया, और इस इल्म से इसको इज्जत मिल जानी थी, लेकिन इसमें सब्र नहीं था। क्या किया इसने? लेकिन वो तो दुनिया ही की तरफ माइल हो गया और अपनी नफसानी ख्वाहिशों की पैरवी करने लगा। लिख लें, इल्म के बाद दो खतरनाक रास्ते होते हैं जो बहकाते हैं। सबीलुल रुश्द की जगह सबीलुल गई पे डालते हैं एक दुनिया, हुब्बे दुनिया, दुनिया दुनिया, जॉब मिल गई, काम करना है, पैसा चाहिए, अब घर सजाना है, घर संवारना है। बहुत सारे लोगों को हिदायत के रास्ते से यूं कान पकड़ के उतार के ले जाती है दुनिया कि तू किधर चल पड़ा, इधर चल, ऐ जहां मिठा थे वो किन्ने डिठा, बाबर बा ऐश कोश के जहां दोबारा नीस्त। कहते दुनिया में कौन सा बार बार आना है, दुनिया देखी जाएगी, दुनिया नकद आखरत उधार, और नौजबिला उधार किसने चुकाया है? शक पैदा करने वाले जुमले हैं। तो दुनिया से डरिए, और दूसरा नफसानी ख्वाहिशात, मैं ऐसी पहन लगूँ, मैं ऐसी बनूँ। कई लोगों पे कुरान का पानी चढ़ता है रमज़ान में, दौरे कुरान में, और जब आगे से सिलसिला नहीं जोड़ते ना, तो ईद की पार्टियों में ही रंग उतरने लगता है, और शवाल के महीने के साथ सब गायब। अल्लाह में ऐसा ना करे। अब मिसाल बहुत करीब है, दिल पे बोझ डालती है, लेकिन सुनिए। ऐसा शख्स जो दुनिया के पीछे लग जाए और नफसानी ख्वाहिशात पे पीछे लग के किताब की आयतों को छोड़ दे, उसका हाल क्या है? फरमाया, सो इसकी हालत कुत्ते की सी हो गई कि अगर तू इस पे हमला करे तब भी वो हाँ पे, या इसको छोड़ दे तब भी हाँ पे। यानी लालच, ग्रीड, दुनिया का भी ग्रीड है ना। यही हालत इन लोगों की है जिन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया। बस आप इस हाल को बयान कर दीजिए, शायद कि वो लोग कुछ सोचें। कुछ सोचने का टाइम दूँ? आज कितने लोग हैं जो इन चीज़ों में खो गए, और इन लोगों की हालत भी बुरी हालत है जो हमारी आयात को झुठलाते हैं और अपना नुकसान करते हैं। जिसको अल्लाह हिदायत करता है बस वही हिदायत पाने वाला होता है, और जिसे वो गुमराह कर दे सो ऐसे ही लोग खसारे में पड़ने वाले हैं। और हमने ऐसे बहुत से जिन और इंसान दोजख के लिए पैदा किए हैं, जिनके दिल ऐसे हैं जिनसे वो नहीं समझते, और जिनकी आंखें ऐसी हैं जिनसे वो नहीं देखते, और जिनके कान ऐसे हैं जिनसे वो नहीं सुनते। ये लोग चौपायों की तरह हैं, बल्कि ये इससे भी ज़्यादा गुमराह, यही लोग गाफिल हैं। बड़ा उदास करने वाला रुकू है, दिल पे बोझ पड़ता है। इसीलिए शायद अल्लाह ने आगे अपने नामों का तذکرہ किया, और अच्छे अच्छे नाम अल्लाह ही के हैं, बस इन नामों से ही अल्लाह को मासूम किया करो, और ऐसे लोगों से ताल्लुक भी ना रखो जिसके नामों में कजरवी करते हैं। इन लोगों को इनके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। और हमारी मखलूक में एक जमात ऐसी भी है जो हक के मुवाफिक हिदायत करती है और इसके मुवाफिक इंसाफ भी करती है। तो आयत 181 में उम्मत मोहम्मदिया के औसाफ बयान किए गए, हक और अदल पे कायम रहने वाले, हक के रास्ते के राही, दूसरों को हक की तरफ बुलाने वाले। अल्लाह आपको मुझे ऐसा ही कर दे। फिर आपने मैंने इसमें से जो बात सीखी, हक के सर रहनुमाई करनी है, अल्लाह की तरफ रुजू करना है, लोगों को खबरदार करने के लिए मिसालें देनी है, गाफिल नहीं रहना, हक के मुताबिक इंसाफ करना है और अल्लाह को उसके खूबसूरत नामों के साथ पुकारना है। अल्लाह ताला में इसकी तौफीक अता फरमाए। अब सूरत अपने ततीमे की तरफ जाने वाली है। रुकू नंबर 13 में आयत 182 से 188 में अच्छे अमाल पे खुशखबरी और बुरे अमाल पे खबरदार किया जा रहा है। वल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना सनस्तदरिजुहुम, और जो लोग हमारी आयात को झुठलाते हैं, हम इनको बतदरीज यानी ग्रेजुअली गिरफ्त में लिए जा रहे हैं, इस तौर पर कि इन्हें खबर भी नहीं। और मैं इनको मोहलत देता हूँ, बेशक मेरी तदबीर बहुत मजबूत है। क्या इन लोगों ने इस बात पे गौर नहीं किया कि इनके साथी को ज़रा भी जुनून नहीं, वो तो सिर्फ एक साफ डराने वाले हैं। और कि इन लोगों ने गौर नहीं किया आसमानों और ज़मीन के आलम में और दूसरी चीज़ों में जो अल्लाह ने पैदा की हैं, और इस बात में कि मुमकिन है कि इनकी अजल करीब ही आ पहुंची हो। फिर कुरान के बाद कौन सी बात पर ये लोग ईमान लाएंगे? जिसको अल्लाह गुमराह कर दे, इसको कोई राह पर नहीं ला सकता, और अल्लाह ताला इनको इनकी गुमराही में भटकते हुए छोड़ देता है। ये लोग आपसे क़यामत के मुतल्लिक सवाल करते हैं कि इसका वक़ूअ कब होगा? आप फरमा दीजिए कि इसका इल्म सिर्फ मेरे रब के पास है, इसके वक्त पर इसको सिवाय अल्लाह के कोई जाहिर ना करेगा। वह आसमानों और ज़मीन में बड़ा भारी हादसा होगा, वह तुम पर महज अचानक आ पड़ेगी। वो आपसे इस तरह पूछते हैं गोया आप इसकी तहकीकात कर चुके हैं। आप फरमा दीजिए कि इसका इल्म खास अल्लाह ही के पास है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। आप फरमा दीजिए कि मैं खुद अपनी ज़ाते खास के लिए किसी नफ़े का इख्तियार नहीं रखता और न किसी ज़रर का, मगर इतना ही कि जितना अल्लाह ने चाहा हो। और अगर मैं गैब की बातें जानता होता तो मैं बहुत मुनाफे हासिल कर लेता और कोई नुकसान मुझे न पहुँचता। मैं तो महज डराने वाला और बिशारत देने वाला हूँ इन लोगों को जो ईमान रखते हैं। अल्लाह के नबी कितनी क्लैरिटी के साथ अपना पैगाम देते थे। आपके मेरे अमल का नुक्ता, अल्लाह की आयतों को नहीं झुटलाना, इंजाम से खबरदार करना है, खुशखबरियाँ सुनानी है, गौर व फिक्र करके अल्लाह की ज़ात की अजमत को समझना है, सरकशी नहीं करनी और गौर व फिक्र करना है ताकि हम जानवरों जैसी ज़िंदगी ना बसर करें। और इसके बाद फिर आखिरी रुकू है सूरत का 189 से 206, औलादों को अल्लाह से जोड़ना है। हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा, अल्लाह ताला ऐसा है जिसने तुमको एक तन वाहिद से पैदा किया, मुराद है आदम, और फिर इसी से इनका जोड़ा बनाया, मुराद है हव्वा, ताकि वो इससे अपने जोड़े से उन्स हासिल करे। फिर जब मियाँ ने बीवी से कुर्बत हासिल की तो इसको हमल रह गया थोड़ा सा या हल्का सा, सो वो इसको लिए हुए चलती फिरती रही। फिर जब वो बोझल हो गई तो दोनों मियाँ बीवी अल्लाह से, जो इनका मालिक है, दुआ करने लगे कि अगर तुमने हमको सही सलामत औलाद दे दी तो हम खूब शुक्र गुजारी करेंगे। बस जब अल्लाह ने दोनों को सही सलामत औलाद अता कर दी तो अल्लाह की दी हुई चीज़ में वो दोनों अल्लाह के शरीक करार देने लगे। क्या कहते थे? पीरा देता, फुला ने दिया, और औलाद की गलत तरबियत करने लगे। बस अल्लाह पाक है इनके शिर्क से कि ऐसों को शरीक ठहराते हैं जो किसी चीज़ को पैदा ना कर सकें और वो खुद ही पैदा किए गए हों, और वो इनको किसी किस्म की मदद नहीं दे सकते और वो खुद भी मदद नहीं कर सकते। और अगर तुम इनको कोई बात बतलाने को पुकारो तो तुम्हारे कहने पर ना चलें। तुम्हारे एतबार से दोनों उम्र बराबर हैं, ख्वाह तुम इनको पुकारो या खामोश रहो। वाकई तुम अल्लाह को छोड़कर जिनकी इबादत करते हो वो भी तुम जैसे ही बंदे हैं। बस तुम इनको पुकारो, फिर इनको चाहिए कि तुम्हारा कहना पूरा कर दें अगर तुम सच्चे हो। क्या इनके पाँव हैं जिनसे वो चलते हों? सोचिए। यानी जो उनके बुत होते थे ना, अक्सर उनकी डमी शक्लें बनी होती थी, उसकी तरफ इशारा है। ज़रा तसव्वुर में लाइए। तो क्या इनके पाँव हैं जिनसे वो चलते हों, या इनके हाथ हैं जिनसे वो किसी चीज़ को थाम ले, या इनकी आंखें हैं जिनसे वो देखते हों, या इनके कान हैं जिनसे वो सुनते हों? आप कह दीजिए कि तुम सब अपने शुरका को बुला लो, फिर मेरी ज़रा रिसानी की तदबीर करो, फिर मुझको ज़रा सी भी मोहलत मत दो। यकीनन मेरा परवरदिगार तो अल्लाह है जिसने ये किताब नाजिल फरमाई, और वो नेक बंदों की मदद करता है। और तुम जिन लोगों की अल्लाह को छोड़कर इबादत करते हो, वो तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकते, और ना वो अपनी ही मदद कर सकते हैं। और इनको अगर कोई बात बतलाने को पुकारो तो इसको ना सुने, और इनको आप देखते हैं कि गोया वो आपको देख रहे हैं, और वो कुछ भी नहीं देखते। यानी बुत जो होते थे 3D बने होते थे, बिल्कुल जिधर से देखें ऐसे लगता है कि वो आपको देख रहे हैं। आप दरगुजर इख्तियार कीजिए, नेक काम की तालीम दे, और जाहिलों से एक किनारा हो जाइए। और आपको अगर कोई वसवसा शैतान की तरफ से आने लगे तो अल्लाह की पनाह मांग लिया कीजिए, बिलाशुबा वो खूब सुनने और जानने वाला है। यकीनन जो लोग खुदा तरस हैं, जब इनको कोई ख़तरा शैतान की तरफ से आ जाता है तो वो याद में लग जाते हैं, सो यकायक इनकी आंखें खुल जाती हैं। और जो शैतीन के ताबे हैं वो इनको गुमराही में खींच लिए जाते हैं, बस वो बास नहीं आते। और फिर जब कभी कोई मौजज़ा इनके सामने जाहिर नहीं करते आप, तो वो लोग कहते हैं कि आप ये मौजज़ा क्यों ना लाए? आप कह दीजिए कि मैं इसकी पैरवी करता हूँ जो मुझ पर मेरे रब की तरफ से हुक्म भेजा गया है। ये गोया बहुत सी दलीलें हैं तुम्हारे रब की तरफ से, और हिदायत और रहमत इन लोगों के लिए जो ईमान रखते हैं। और जब कुरान पढ़ा जाए तो इसकी तरफ कान लगा दिया करो और खामोश रहा करो, उम्मीद है कि तुम पे रहमत हो। और ऐ शख्स, अपने रब की याद किया कर, अपने दिल में आजजी के साथ और खौफ के साथ, और जोर की आवाज़ की निस्बत कम आवाज़ के साथ, सुबह और शाम, और अहले गफलत में से मत हो जाओ। यकीनन जो तेरे रब के पास है, मुराद फरिश्ते, वो इसकी इबादत से तकब्बुर नहीं करते, और इसकी पाकी बयान करते हैं, और इसको सजदा करते हैं। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सूरत अल-अराफ़ पूरी हुई, और यहाँ पहला सजदा भी है। सजदा तिलावत फ़र्ज़ तो नहीं है, अजर बहुत है। जब यहाँ से बाद में उठेंगे तो चाहें तो आप सजदा कर लीजिएगा, लेकिन आपको मुझे इस आखिरी रुकू से जो बात समझ आई, वही की पैरवी करनी है, अल्लाह ताला से दुआ करनी है, अल्लाह को वली बनाना है, और शैतान की उकसाहटों से अल्लाह ताला की पनाह मांगनी है, और जाहिलों से मुंह मोड़ना है, और नेकी का हुक्म देना है, अल्लाह से डरना है, कुरान को तवज्जो और गौर से सुनना है, रब को आजजी से, खौफ से, पस्त आवाज़ से याद करना है, और अपने रब को याद करते हुए ये दुआ करनी है कि अल्लाह हमें ऐसा बना दे कि क़यामत के दिन जब तू हमें देखे तो तुझे हम पे प्यार आ जाए। आप देखिए कि सूरत अल-अनाम और सूरत अल-अराफ़ नस्बतन हल्की सूरतें थीं। इसमें इंसान को बार बार अल्लाह की मोहब्बत की तरफ माइल किया गया, और आखरत, ख़ास तौर पर इन दो में ये चीज़ें थीं।